Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे और साथ ही उस पर चर्चा भी करेंगे। आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सवाल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि हम किसी खास स्टॉक या कंपनी विशेष के बारे में कार्यक्रम में चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें 2342-1050 और 2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें। चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला। प्रकाश चावला जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
नमस्कार प्रकाश। नमस्कार।
सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख।
सेंटर हैज अलाउड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवर 99,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अनियन। द प्रोक्योरमेंट टारगेट फॉर रबी 2024 हैज बीन फिक्स्ड एट 5 लाख टन्स दिस ईयर। Nasdaq jumps 2% as Microsoft and Alphabet report strong earnings. S&P rises 1%, Dow settles at 0.4%. And crude oil prices rise after 2 weeks of losses. Brent goes past $89 and WTI rose up to $84.
केंद्र ने 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात को मंजूरी दी। इस वर्ष रबी की फसल के लिए प्याज खरीद का लक्ष्य 5 लाख टन निर्धारित किया। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट के शेयरों में तेजी से। नैस्डैक में 2% का उछाल, एसएनपी में 1% और डाउ जोन्स में 0.4% की बढ़त दर्ज। और 2 सप्ताह की नरमी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुख। ब्रेंट क्रूड $89 प्रति बैरल से ऊपर कर रहा कारोबार। और सबसे पहली खबर प्याज के निर्यात से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2,000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। पिछले साल दिसंबर में वर्ष 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों की अनुमानित कम उपज को देखते हुए और पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत रबी सीजन 2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस साल 5 लाख टन तय किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियां खरीद और भंडारण में सहयोग के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ समझौता कर रही हैं।
We joined in by our first caller online now. Yogesh from Delhi is with us. A warm welcome, Yogesh. Please go ahead and ask your question.
Thank you so much. Namaste, Akshay Bhai. जी, सवाल ये है कि अल्टरनेट एसेट की कैटेगरी में एक पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या इसको इन्वेस्ट करना चाहिए? पी टू पी लैंडिंग में उसमें कितना रिटर्न और कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है?
क्या जी आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देंगे?
योगेश, कैन यू नो, वी हैव लॉस्ट टच विद हिम। योगेश, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉल अस बैक अगेन एंड get in touch with us. And in the meantime, we just want to remind you that if you have any question related to the economy or market, you could call us at 2342-1050, 2331-4444. Please remember, we don't address questions related to any specific stock or companies. Once again, the numbers are 2342-1050 and 2331-4444. Joining us now is Jitendra from Jaipur. A warm welcome, Jitendra. Please go ahead and ask your question.
Sir, the market high chal raha hai aur election bhi chal raha hai. To pata nahi sarkar jaye ya ruke kya. To kya kuch profit book karna chahiye?
जी प्रॉफिट बुक करना चाहिए
प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी हो रही है तो इसका कोई इलेक्शन से ताल्लुक नहीं लगता क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ऊपर तक पिछले कुछ हफ्तों में उस मार्केट का जो लेवल है हमारी मार्केट का वो उस स्टेज तक पहुंचा हुआ है कि टेम्पटेशन है लोगों की प्रॉफिट बुक करने की तो प्रॉफिट तो बुक हो रहा है इसी वजह से आप फ्राइडे को देखिए काफी सारा प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुक कभी कभी करना भी चाहिए जब आपको लगता है कि आपके गोल्स कुछ अचीव हो गए हैं और इसका कोई इलेक्शन या उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए
जी चावला जी अगर जो पिछला कारोबारी सप्ताह था शेयर बाजार घरेलू शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो 642 अंक की वृद्धि हुई पूरे सप्ताह के 5 कारोबारी दिनों में और हालांकि शुक्रवार को बाजार जरूर गिरावट के साथ बंद हुआ कुल मिलाकर के 73,730 पर सेंसेक्स बंद हुआ और निफ्टी ने 273 पॉइंट्स की पूरे सप्ताह के दौरान कारोबारी सप्ताह में तेजी दिखाई दी और 22,419 पर निफ्टी भी बंद हुआ सबसे जो एक खास बात सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो बीएसई रियल्टी इंडेक्स ने सबसे ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली और 4.4% का उछाल दर्ज किया गया इस पिछले कारोबारी सप्ताह में तो ये क्या बताता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतना बूम तेजी क्या देखते हैं आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे
एक्चुअली क्या हुआ है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर हमारा पिछले साल भर से उससे भी थोड़ा ज्यादा फोकस में आ गया काफी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है रियल एस्टेट कंपनीज की और लिमिटेड कंपनीज हैं इस सेक्टर में 8-10 कंपनी होगी मैक्सिमम तो अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन में रियलिटी में डिमांड बड़ी पड़ी हुई है और खासतौर पे उन कंपनियों में जो प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है मतलब जो महंगे वाले मकान हैं और बाकी भी चीजें हैं तो ऐसे में इन्वेस्टर का काफी रुझान उस तरफ होने लगा
यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग से अब रुझान अब प्रीमियम हाउसिंग
प्रीमियम जिसको बोलते हैं प्रीमियमाइजेशन वो आमतौर पे ये कोविड के बाद का एक यूनिक सा फिनोमेना है हर चीज में प्रीमियमाइजेशन जो है उस पर काफी इन्वेस्टर्स का फोकस रहा है तो इसके चलते रियलिटी में काफी बूम आपको नजर आ
जी दिल्ली से हमारे श्रोता योगेश फोन लाइन पर हमसे दोबारा जुड़ गए हैं योगेश अपना सवाल पूछिए प्लीज
जी मेरा सवाल ये था कि पीयर टू पीयर लैंडिंग जो होती है पी टू पी लैंडिंग ये रिटेल निवेशकों के लिए क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है निवेश के लिए पीयर टू पीयर लैंडिंग को उसमें क्या रिस्क और कितना रिटर्न इन्वॉल्व रहता है
ये पीयर टू पीयर लैंडिंग का क्या पूछना चाहते हैं कौन
क्या होता है यही जानना चाहते हैं
निवेश का माध्यम है कि नहीं
नहीं नहीं वो रिटेल इन्वेस्टर को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह में आप सिंपल प्रक्रिया अपने आप को या म्यूचुअल फंड में जाइए या आप अगर आपके पास नॉलेज है तो स्टॉक्स में जाइए ज्यादा इसमें टेक्निकल उसमें ना पढ़िए क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं है तो आपके ऊपर क्या उसमें रिस्क होते हैं किस तरह का उसमें रेगुलेटरी इश्यूज भी आ सकते हैं तो हमारी एडवाइस ये है कि आप स्ट्रेट कीप इट सिंपल और जो एक तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का या तो आप डायरेक्टली खरीदिए या म्यूचुअल फंड के तरीके से
और पीयर टू पीयर लैंडिंग होती क्या है
पीयर टू पीयर लैंडिंग का बेसिकली जैसे कई बारी ये होता है कि आपने दो प्लेयर्स के बीच में है लैंडिंग उसको आप स्टॉक मार्केट के दायरे में लाते या मार्केट के फाइनेंशियल मार्केट के दायरे में लाते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ भी कोई क्लैरिटी नहीं है. मतलब ये जो इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ अ थिंग, तो इसको ज्यादा अभी ऐसा नहीं है कि कोई टेस्टी ट्राइड एंड टेस्टी चीज.
We have two callers online with us, one from Mumbai, the other from Indore. First, we go to Indore and say hello to Anil. A warm welcome, Anil. Please go ahead and ask your question.
Sir, Anil speaking from Indore.
Ji, ji, sawal puchhe apna.
Sir, sawal hai ki jaise aksar hum bank mein FD karte hain, har bank se apne shuruaat mein jo dar bhi hai, wo kaise hai ki aap ye kaise.
जी अनिल जी, आप और थोड़ा सा क्लियर बोलें, हमें आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही. आप अपना सवाल और स्पष्ट तरीके से पूछें.
अपना सवाल ये है कि जैसे ग्राहक लोग हैं जो पेमेंट में करते हैं, अलग अलग तो
अनिल जी, आप अगर किसी मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो ऐसी जगह जाएं जहां आपका सिग्नल हमको आराम से मिल सके. दोबारा कॉल कीजिएगा. इन द मीन टाइम वी आर जॉइंड बाय गोपाल फ्रॉम मुंबई. गोपाल, अ वॉर्म वेलकम.
माध्यम जी, नमस्कार.
नमस्कार
सर, मेरे दो सवाल है. एक तो मेरे पास जो पोर्टफोलियो है, मैंने 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे स्टॉक में बहुत सारा लॉस चल रहा है. तो मेरे ये डीमैट अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा ना? थोड़ा ये पूछना है. दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 महीने में चाहे बीएसई हो चाहे एनएसई हो, मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे बड़े हैं कि मैंने अपने 25 साल में नहीं देखा था. आखिर कारण क्या, इतना क्यों हवा में चल रहे स्टॉक?
पहले सवाल का जवाब देता हूं कि आप 2008 के बाद आपने कहा लॉस में चल रहा है, तो आप उस तरफ देखते ही नहीं है, यही मतलब है शायद आपका. तो डीमैट अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा? तो आपको जरूरी, आपने डीमैट जो आपका ऑपरेटर है, डीमैट मतलब जो आपका ब्रोकर है, पहले आप ब्रोकर से कांटेक्ट में लें, उनसे आप पूछिए. और डीमैट बंद होने का तो कोई रिस्क नहीं है, बट आप इतना इनऑपरेटिव क्यों रह रहे हैं? फिर आपको अगर मार्केट में दिलचस्पी है तो 2008 और कहां 2024, इतने लंबे अरसे तक आपको इनऑपरेटिव नहीं रहना चाहिए. या आप डिसाइड कीजिए मार्केट में.
He said that he had major losses because of which he is shying away from getting into the market.
Then in that case he must consult some advisor as to how to, whether particular share, whether he has to,
he may have to move portfolio.
Oh yes, he has to what is called repair the portfolio at times, for which he would rather, because someone who can help him in choosing specific share or avoiding specific shares. Second question is that why is that market has been on a kind of a boil situation in the last few months, he said.
Especially mid cap or small cap.
तो ऐसा नहीं कि 4 महीने में हुआ, मार्केट का हमारा जो अंडर टोन है अंडर बड़ा स्ट्रांग रहा है और बीच बीच में उसमें उछाल भी आता है. अब मार्केट का नेचर ही ऐसा है, मार्केट कोई एक लीनियर ट्रेंड से नहीं चलता. एकदम से कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आए फिर उन्होंने एग्जिट किया, ये उछाल फिर ग्लोबल इवेंट्स पे भी डिपेंड करता है. तो आजकल जैसे ग्लोबल इवेंट्स पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, तो थोड़ा सी वरी भी है ग्लोबल इवेंट्स जैसे जियो पोलिटिकल सिचुएशन है मिडल ईस्ट में. तो मार्केट को तो आपको बिल्कुल अवेयर हो कि उसको टैकल करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि 4 महीने से ही कुछ हुआ है. मार्केट हैज बीन ऑन ए वेरी स्टेडी rather strong kind of a wicket for the last few months. एक साल भर से भी ऐसा है, मार्केट का अंडरटोन बड़ा स्ट्रांग है हमारी इंडियन मार्केट खासतौर पर.
जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये स्मॉल कैप और मीडियम कैप जो कि स्टॉक्स हैं ये ओवर वैल्यूड हैं.
ये तो रिस्क मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में जिक्र किया, हमारी सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये फ्लैग किया था इश्यू कुछ महीने पहले कि उसमें कुछ फ्रॉक सा आ गया है, झाग सी आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है.
जी, अनिल इंदौर से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं. और अनिल, सवाल पूछिए अपना. अब
सवाल
आप धीरे धीरे बोलिए तो बेटर होगा.
हाँ, शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में कप्तान कराते हैं तो वहाँ पे अपने को नहीं बताया जाता कि कितना परसेंट आपकी हर साल लगेगा, जब से हम बैंकों में इश्यू करते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज बताया जाता है 8% 9% 7.5% सीनियर सिटीजन के लिए कितना, लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता है। क्या कारण
ये म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि
नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट,
इतना परसेंट लाभ बताया जाता है अगर ये म्यूचुअल फंड लेंगे या वो लेंगे।
नहीं, आजकल तो रेगुलेटर ने काफी डिस्क्लोजर नॉर्म्स टाइट कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन आपको खुद थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यू मस्ट बी टेकिंग इंटरेस्ट and disclosure norms are quite tight when it comes to mutual funds by the regulator. I don't think there is any major issue.
जी, हमारे इससे पहले एक श्रोता ने सवाल पूछा था डीमैट से संबंधित, तो जब डीमैट अकाउंट में अगर मान लीजिए कोई शेयर की खरीद फरोख नहीं कर रहा काफी लंबे समय से, तो क्या डीमैट अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है, और इस इनएक्टिवेशन के दौरान क्या हर साल जो डीमैट प्रदाता कंपनी है अकाउंट जो हमने जिसके साथ खोला है वो उसके लिए कुछ पेनाल्टी भी लगाती है?
देखिए जी, डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या है, डीमैट अकाउंट इज कि आपकी प्रॉपर्टी, शेयर तो आपके है ना, तो डीमैट के जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL वगैरह है तो वो आपकी आपके बिहाफ पे आपका अकाउंट मैनेज करते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको बेचना है या इन एक्टिव रहना है, लेकिन क्या है कि जब डीमैट अकाउंट है, एक ब्रोकरेज अकाउंट है, सारा कंबाइंड चलता है, तो समय समय पर KYC नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको बिल्कुल वहां से एक एडवाइजरी आती है, जैसे मुझे पिछले हफ्ते आई कि आप अपने KYC नॉर्म्स को कंप्लीट अपडेट कीजिए। तो अगर आप KYC नॉर्म्स को अपडेट करते रहते हैं और जब भी एडवाइस आती है उसको आप फॉलो करते हैं, तो फिर कोई ऐसा नहीं है। डीमैट अकाउंट एक्ट इट्स लाइक योर बैंक अकाउंट, वो अगर आप KYC नॉर्म्स कर रहे हैं और उसको कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई मजबूरन आपको बेचना ही है।
वी हैव आवर प्रकाश जी नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस फ्रॉम मिर्जापुर, चंद्र मौली, अ वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू सर। मेरे क्वेश्चन था सर कि मैंने दो म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, SBI का डिफेंस फंड और ICICI का मैन्युफैक्चरिंग फंड। मुझे ये जानना है कि क्या ये दोनों फंड मैंने चुनाव सही किया है, क्या लंबे समय तक किया है, और मैं कौन फंड करना चाह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड आइडिया अच्छा है। थैंक यू सर।
Before Prakash tells you his point of view on your questions, Chandramouliji, I would like to tell you that we have on Sundays a special program on mutual funds, same time, same frequency, and we have a mutual funds expert over there. So you could direct your questions to the mutual fund expert tomorrow, Sunday, at the same time in the same program. So, Prakash, if you want to throw some light on what he asked, it's okay. Otherwise, we request Chandramouli to call us tomorrow.
So, I would only answer to the extent that, because I would like to avoid performance of a specific mutual fund in which he was referring to. Because, as you rightly said, that this is not nature of this program to be specific about X mutual fund or Y. But overall, mutual funds have been doing well. Because mutual fund at the end of the day also is a reflection of the state of affairs in the market. Since the market has been doing well, and generally you refer to, aapne jaise zikr kiya, small or medium. To aaj maine dekha ki स्मॉल कैप्स हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो लेकिन ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा ही करते रहे, तो इस सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपने उनसे बताया कि जो कल प्रोग्राम है उसमें स्पेसिफिक कोई आपका सवाल पूछिए, लेकिन म्यूचुअल फंड एज ए स्टोरी बड़ी अच्छी चीज है।
मूविंग ऑन, द US स्टॉक्स क्लोज्ड हायर ऑन फ्राइडे बॉयड बाय रैली इन मेगा कैप growth stocks following robust quarterly results from technology heavyweights Alphabet and Microsoft, in addition to moderate inflation data. Investors cheered Alphabet's first ever dividend, its $70 billion stock buyback program, and better than expected first quarter results. Its shares jumped 10% and reached a record high, lifting the Google parent company Alphabet's market value above $2 trillion. Microsoft shares rose 1.8% after its third quarter revenue and profit exceeded Wall Street estimates, driven by gains from artificial intelligence adoption across its cloud services. Other mega-cap growth stocks also closed higher. Amazon.com rose 3.4%, Nvidia gained 5.8%, and Meta Platforms added 0.4%. However, Apple fell 0.3% and Tesla closed down 1.1%. On Wednesday, Meta results had disappointed investors even as the company ratcheted up spending on AI. 6 out of the 11 major S&P 500 sectors finished higher, led by gains in communication services, technology, consumer, discretionary, and materials. The S&P 500 and the Nasdaq registered the biggest weekly percentage gains since early November 2023. Benchmark S&P 500 snapped 3 weeks of losses, while the Nasdaq ended 4 straight weeks of declines. The Dow Jones Industrial Average rose 0.4%, the S&P 500 gained 1%, and the Nasdaq Composite gained 2%. What's your take on the U.S. Stocks, which did fairly well on Friday? In the coming week, the way the U.S. markets will behave will reflect very strongly in our markets as well.
Well, there are two questions you are asking. One is the performance of the U.S. Companies and mostly the technology companies that you referred to. Now, what has happened in the U.S. technology company is really something unique is happening. If you see in the last few years, these technology companies of the U.S. have laid off a lot of people. They have reduced their headcount all over the world, including in India. So they have been, in a way, kind of, I would not say ruthless, but they have been, you know, reducing their workforce. They have been cutting costs at whatever the cost. So that is one of the reasons that, you know, expenses have come down and they are able to perform. The other reason is that new technologies like AI, they are adapting those technologies very well. So combine this, you know, all this, it reflects on their balance sheet. But it's too early to say whether they can continue this trend, because till now it is not more of a business volume that is helping them, it is the cost reduction that is helping them. Now when it comes to how will the next week is going to be, that would depend on the very important event of the Federal Reserve next week, because they are going to take a call on the interest rates and some US job data is going to be released. So that will also have a lot of impact on the way markets behave next week.
Okay. So you're talking about the cutback in the labor force, etc., is adding to their... Is that the reason why Alphabet's market value has gone up to $2 trillion? Is that... I doubt that. It's not to do with the labor... you know, reduction that they are doing.
No. What happens is that the market loves performance. Market loves performance. Balance sheet performance. Market doesn't take a look at your headcount.
Absolutely.
The shareholder is not bothered.
That is my point.
Yes, he is not bothered. So, as long as you are able to deliver the expectations of a shareholder, the market cap will continue to go. So market has no sentiment when it comes to labor force or the workforce. Market is concerned about the performance of a company.
जी, दिल्ली से भारत भूषण फोन लाइन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं. भारत भूषण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना.
हाँ, मार्केट बंद है, टीम को नमस्कार.
नमस्कार
सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी सर चर्चा करते हैं फंडामेंटली, तो अभी मैंने देखा है कि जो मार्च क्वार्टर में 21 मार्च को समाप्त हुई तिमाही में कुछ एक कंपनी ऐसी है जिनको 90% का मुनाफा हुआ है, ठीक है सर, ईयर ऑन ईयर बेस पे. उसके बावजूद उस कंपनी के शेयर में तेज गिरावट है, प्लस उसके बाद दूसरी उलट एक कंपनी की आईटी कंपनी है उसके शेयर में इतनी तेजी आई जिसके मुनाफा 41% घटा है क्वार्टर में, तो ये कैसे, कौन सा फंडामेंटल है सर, कौन सा टेक्निकल है ये? धन्यवाद।
देखिए जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ एक कंपनियों में जबरदस्त फायदा हुआ है, उनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये चीजें काफी इसमें काफी फैक्टर्स होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, अगर आपकी कंपनी की अच्छी है, आपने कैसे परफॉर्म किया, जैसे अमेरिकन कंपनीज है हेडकाउंट, हमारे यहाँ हेडकाउंट कंपनी हो रहा, लेकिन परफॉर्मेंस और भी कई पैरामीटर होते हैं, आप कंपनी को मैनेज कैसे करते हैं, एक तो वो एफिशिएंसी कैसे करते हैं, आपकी सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसी है, दूसरा आपको वेस्टेज कैसे कम करते हैं, दूसरा ये कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में जो आपका रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप उस स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं, हम डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन कुछ एक कंपनी ऐसे हैं जिनके रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफी कमी आई है या स्टेडी हो गए, ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो वो उसका फायदा इन कंपनियों को होता है। लेकिन कुछ कंपनियों को इन्होंने जिक्र किया घटा हो, तो सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, कुछ जैसे एनर्जी की कंपनीज अगर हैं, ऑयल की कंपनीज हैं, तो वो सिक्लिकल में अगर पेट्रोल का प्राइस, क्रूड का प्राइस बढ़ जाएगा तो इम्पैक्ट हो जाएगा, मेटल जो है वो एक्स तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, ओवरऑल क्या सिस्टम, डिमांड की क्या हालत है।
Moving on, the oil prices rose on Friday on track to end higher this week after two straight weeks of losses. Brent crude futures gained past $89 a barrel. US WTI crude futures rose to $84 a barrel. For the week, Brent has gained 2.3% so far, while WTI is up 0.8%. US economic growth was likely stronger than suggested by weaker than expected quarterly data. Data showed that economic growth slowed in the first quarter. Tremors from acceleration in inflation had weighed on oil prices as investors calculated that the Federal Reserve would not cut interest rates before September. The Brent crude oil futures were higher at $89.50, whereas West Texas Intermediate was up at $83.85 when reports last came in. Prakash, what is the reflection of the higher oil prices on the inflation? Will this affect Indian markets quite a bit? Because higher the fuel costs, it's likely to bring up the inflation.
Well, I agree with you that the crude prices have a great impact, huge impact on Indian industry and the Indian economy. But what has happened is, despite the despite problem in Middle East geopolitical situation, crude has behaved in a manner which has not given us a shock kind of a thing. Of course, it was feared that the crude might, but
thanks to Russian oil that we buy.
Well, that's an old story, but in the immediate past, somehow the crude has not really gone in a very strange or a, but it has remained steady because notwithstanding the geopolitical problems there. So fortunately for us, for Indian market, you said about 89. USD it's right now, but in the last your story itself said that it has regained after corrections. So let's keep our fingers crossed because you don't know how the situation will pan out in the Middle East, but we have to be on our toes. We have to be careful about it.
Okay, thank you so much, Prakash, for being with us and answering the queries of our listeners and giving them inputs on your behalf.
Thank you so much.
And before we close, the headlines once again. Center has allowed exports of over 99,000 metric tons of onion. The procurement target for Rabi 2024 has been fixed at 5 lakh tons this year. Nasdaq jumps 2% as Microsoft and Alphabet report strong earnings. S&P rises 1%, Dow settles at 0.4%. And crude oil prices rise after 2 weeks of losses. Brent goes past $89 and WTI rose up to $84. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.